महाबंध पुस्तक पहिली लेक्चर नंबर 11 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमो अरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धादद्धटमला विशुद्ध बुद्धि अलत सौवर्था तिरुवन शिरसे हरया पश्यन्तु गणारया सर्वे। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसके पुस्तक पहली जो है उसमें प्रथम प्रकृति बंधाधिकार को देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 51 पर आ गए। 51 अलग अलग गतियों में कितनी प्रकृतियों का कौन बंधक है उसकी अपनी चर्चा चल रही। नरक गति में जब बात की तो वहां तो चार गुणस्थान है, तो सभी बंधक है जब कहेंगे तो चारों ही गुणस्थानों में जो प्रकृति बनती है उसको लिया था, तो वो हमने डिटेल में देखे थे चारों ही गतियों में। फिर हमने सभी गतियों में निवृत्ति पर्याप्तकों की भी बात देखी। अब यहाँ 51 पृष्ठ पर तिर्यंच गति की बात, यहाँ नीचे से जो नीचे वाला पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ेंगे तिर्यंच गति। ये तो पढ़ी हुई बात, वो फिर दोबारा यहाँ वही विषय दोहराते हैं अलग अपेक्षा से। तिर्यंचों के सामान्य तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पर्याप्त तिर्यंच तथा योनिमत तिर्यंच, योनिमती कहो या योनिमत कहो एक ही बात है। इस प्रकार जो चार भेद कहे हैं,
अपर्याप्त लेने का ना,
किसमें
पर्याप्त तिर्यंच
में पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच एक्चुअली होते हैं वहां पर, अपर्याप्तम को छोड़ना लब्ध्य अपर्याप्तम को, और पर्याप्त तिर्यंचों में पुरुष वेद और नपुंसक वेद वाले लेना। पर्याप्त अपर्याप्त दोनों, एक है पंचेंद्रिय तिर्यंच और एक पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त।
सामान्य
सभी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, अपर्याप्तों से पर्याप्त तक। जब पंचेंद्रिय तिर्यंच कहेंगे तो पर्याप्त अपर्याप्त का भेद किए बिना उसमें सभी इंक्लूडेड होंगे।
सामान्य में भी वही होएगा ना,
सामान्य में तो एकेंद्रिय भी लिए ना, यहाँ पंचेंद्रिय की बात है। यहाँ उन्होंने पर्याप्त तिर्यंच लिखा है, परंतु वहाँ पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच ऐसा होना चाहिए। देखो हमने पहले उनके भेद देखे थे, आपको दिखा देती हूँ मैं तिर्यंचों की बात। देखो 49 पृष्ठ निकालना, दो तीसरी लाइन, थर्ड लाइन, पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्तक, पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति है ना। और पहला वाला तो हमने सामान्य तिर्यंच, उसमें तो सभी आ गए, केंद्रीय से पंचेंद्रिय पर्याप्त पर्याप्त सब कुछ जो कुछ है तिर्यंच गति में जितने हैं वो सब आ गए। तो यहाँ जो उन्होंने पंचेंद्रिय तिर्यंच लिखा है 51 पृष्ठ पर, उसके बाद पर्याप्त तिर्यंच कहा तो पंचेंद्रिय पर्याप्त लिखना है, क्योंकि उस वेद का नाम पंचेंद्रिय पर्याप्त। पुरुष वेद और नपुंसक वेद दो वेद वाले, और स्त्री वेद वालों को अलग निकालकर योनिमत तिर्यंच का, तो उनमें इन सभी भेदों में पांचों ही गुणस्थान होते हैं। तिर्यंचों में तीर्थंकर तथा आहारक द्विक इन प्रकृतियों के बंध का अभाव रहने से, देखो यहाँ तो बंध की बात है, वैसे देखेंगे तो तीर्यंचों में तो सत्व का भी अभाव है, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला कोई तीर्यंच में उत्पन्न नहीं होता, परंतु किसी ने आहार का बंध किया है मिथ्याद में गया हो और वो तीर्यंच में भी जा सकता है। आहार यानी आहार की सत्ता वहां पर भी पाई जाती है, सत्ता की बात है, बंध की नहीं। बंध तो कहाँ होता है, सातवें आठवें गुण स्थान में मनुष्यों में होता है, परंतु ऐसा कोई जीव जिसने मुनि अवस्था में आहारक का बंध किया है और कालांतर में मिथ्यात में गए हैं, तो असंख्यात वर्षों तक सत्ता बनी रहती है, उसकी उद्वेलना होने के लिए इतना लंबा काल लगता है, तो वो हो सकता है एक इंद्रिय में गए, किसी तीर्यंच में गए, अन्य भी इंद्रियों वाले तीर्यंचों में, तो वहां उसकी सत्ता हो सकती है, परंतु क्या ऐसे इसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव मनुष्य में शुरुआत करता है, मरकर या तो देव में जाएगा या नरक में जाएगा, भोग भूमि में जाएगा ही नहीं, वहां का मनुष्य भी नहीं होगा, तो वहां सत्ता नहीं है। अब परंतु अपना यहाँ विषय सत्ता का नहीं चल रहा है, बंध का चल रहा है, इसलिए कहते तीर्थंकर और आहार का बंध यहाँ नहीं है। तो बंध का अभाव है, इसलिए उनके बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है, तो 117 120 में से तीन में निकाली। तीर्यंचों के बंध योग्य प्रकृतियां कितनी है, 117 उसका बंध होता है। मनुष्य गति के समान तीर्यंचों में भी वज्रषभ नारा सहनन औदारिक द्विक मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुकूली तथा मनुष्यायु की बंध विच्छित्ति अविरत के बदले में सासाधन गुणस्थान में होती है। ये दो गतियों में विशेषता है, तीर्यंच और मनुष्यों में ये छह प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति चौथे के बदले दूसरे में ही हो जाती है, यानी देव सम्यक दृष्टि मनुष्य गति आदि का बंध करेंगे, परंतु मनुष्य सम्यक दृष्टि या तीर्यंच सम्यक दृष्टि मनुष्य गति का बंध नहीं करेंगे, देव का ख्याल में नहीं। नारकी सम्यक दृष्टि मनुष्य गति मनुष्यायु आदि बांधेगी, परंतु मनुष्य सम्यक दृष्टि मनुष्यायु या मनुष्य गति नहीं बांधेगी, वो तो देव गति देवायु आदि का बंध करेंगे। तीर्यंच और मनुष्यों में हमने कल देखा था ना, सामान्य से दूसरे गुणस्थान के बंध विच्छित्ति कितने की है, तो 25 की, आपको याद है ना, ये 25 यानी 25 कौन से, वो मैं पूछ नहीं रही, 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती है दूसरे में, और तीर्यंच मनुष्यों में 25 और ये 6 31 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति दूसरे में होती है, इसका अर्थ ख्याल में आ रहा है ना बात। अब यहाँ आते हैं 52 पृष्ठ पर, निवृत्ति अपर्याप्त तीर्यंचों में, ये निवृत्ति अपर्याप्त किसको कहना याद है आपको, हाँ बोलो,
पर्याप्त वो शरीर
एक समय शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पूर्व तक उसको क्या कहेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त, यानी वो पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है, उसकी पर्याप्ति नियम से पूर्ण होने वाली है, परंतु अभी कार्य चल रहा है, तब तक उसको हम कहेंगे निवृत्ति अपर्याप्त। तो निवृत्ति अपर्याप्त तीर्यंचों में अभी कोई भी निवृत्ति अपर्याप्त जीव है उसको आयु का बंधन नहीं होता, तो यहाँ चार आयु लिए, क्योंकि तीर्यंच चारों आयु का बंध करते, इसलिए चार आयु उसमें से माइनस करना है। यहाँ बंध योग्य प्रकृति कितनी होती है, आयु का बंध यहाँ होता नहीं है, तथा नरक द्विक का बंध का अभाव होने से नरक द्विक भी नहीं बांधेगे, तो सुरद्विक या सुर चतुष्क को क्यों छोड़ा नितिन भाई, क्या अपर्याप्त अवस्था में देवगति बांध सकते हैं, तो यहाँ क्यों छोड़ा, नरगति को लिया देवगति को नहीं लिया, बंदा भी ना बताए, उसकी बात नहीं है, निवृत्ति अपर्याप्त तीर्यंच यहाँ गुणस्थान नहीं बताया है, तो नरक द्विक का तो बंध का अभाव हुआ है, परंतु देवगति बांध सकता ऐसा अर्थ हुआ ना इसका, चौथा गुणस्थान वाला जीव जो है अभी यहाँ से मरकर सम्यक्तों के साथ भोग भूमि वाला तीर्यंच हुआ, और वहाँ निवृत्ति अपर्याप्त दशा चल रही है तो वो कौन सा बंद करेगा? देवगति। सम्यक दृष्टि है ना, वो इसलिए देवगति का करेगा। परंतु ऑर्डिनरी यानी मिथ्या दृष्टि है, सासाधन है, तो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ना देवगति का बंद कर सकता है ना नरक गति का कर सकता है। ऑर्डिनरी जो कुछ
है इसमें देव और मनुष्य दोनों का कर सकता है,
चौथे गुणस्थान वाला देव का ही करेगा,
उसका ही करेगा।
यहाँ तो इन जनरल बात की थी, निवृत्ति अपर्याप्त में कौन कौन सा करेगा? तो मिथ्या दृष्टि हो गए तो हाँ क्या कहते
हैं,
मिथ्या दृष्टि नहीं बांधेगा वहाँ का भूभूमि वाला, मिथ्या दृष्टि वाला बांधेगा उसके ना नहीं है, परंतु यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त दशा की बात चल रही है। वहाँ तो देव मिथ्या दृष्टि होगा भोग भूमि का,
वो भी देवगति बांधेगा,
तो वो भी नहीं बांधेगा निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में। क्योंकि अच्छा आयु नहीं बांधता है ना, आयु नहीं बांधता, गति बांधेगा, गति का बंधक होगा
ना।
मिथ्या दृष्टि के सभी, परंतु ये भोगभूमि की बात उठा रहे, भोगभूमि में देवगति का ही बंध होता है ना, इसलिए उसकी बात ली। और तिर्यंची इन जनरल कर्म भूमि के ले लेंगे तो उनके तो वहां पर भी नरक गति का बंध नहीं होगा और देवगति का भी नहीं होगा कर्म भूमि में। क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्त दशा में देवगति आयु तो चारों ही नहीं बनती, गति वो नहीं बंद करती, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में वो बनती नहीं है। पर्याप्त होने पर देवगति और नरगति का बंधन चालू हो जाता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, निवृत्ति अपर्याप्त तिर्यंच, चार आयु का बंध सर्वथा नहीं होगा किसी भी गुणस्थान में, नरक द्वीप का भी बंध का अभाव है। तो बंध योग्य कितने? तो 111 प्रकृति। देवद्वीप को इसलिए छोड़ा कि चौथे गुणस्थान वाला बांध सकता है, इसलिए उसको छोड़ दिया। वो कौन सी गति बांधता है फिर भी देखेंगे हम, उसको कंफर्म करेंगे। वहां तो देवगति बनती है परंतु अन्यथा अपर्याप्त अवस्था में ना देवगति बनती है ना नरगति बनती है। उन्होंने बिना गुणस्थान की चर्चा की है और वहां भोगभूमि और कर्मभूमि का भी भेद नहीं लिया है, फिर भी निवृत्ति अपर्याप्त की अवस्था में देवगति के डाउट है मुझे। वहां पर भी देखेंगे हम, समय ज्ञान चंद्रिका में देख लेंगे बाद में। जीवकांड में होगा ये, क्या कर्मकांड में?
लेशा कौन सी हो सकती है?
लेशा अशुभ है,
अशुभ है
बिल्कुल। हाँ कपोत लेशा में जन्म लेगा, समय दृष्टि तिर्यंच भी, समय दृष्टि तिर्यंच भी कपोत लेशा में जन्म लेगा, मिथ्या दृष्टि तो अशुभ लेशा में ही जन्म लेगा ना। वो गति गति की गति अपर्याप्त अवस्था में देवगति और नरगति नहीं बनती। देवगति किसके बनती है? समय दृष्टि के बनती है। इसलिए उस अवस्था में निवृत्ति अपर्याप्त भूभूमि वाला तिर्यंच मनुष्य कौन सी गति बांधता है, इस पर हम जरा देखेंगे फिर दोबारा। नरगति किसी के भी नहीं बनती, देवगति भी नहीं बनती मिथ्या दृष्टियों के अपर्याप्त अवस्था में नहीं। वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर बांध सकता है, ये रूल है।
रूल तो ठीक है, क्यों नहीं
नहीं नहीं नहीं, वो देव गति और नरक गति का बंध निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, ये तो रूल बस। हाँ वो बंध योग्य नहीं है उस अवस्था में, ये पहले हमने देखे थे कहा, अभी कर्मकांड में अपना विषय चल रहा था, वहाँ की बात चल रही। कर्मकांड में शाम को हम देखेंगे आज इनके यानी निवृत्ति अपर्याप्त तिर्यंचों में गुणस्थान कौन से हो गए? तीन, पांचवा तो नहीं हो सकता, वो तो पर्याप्त होने पर होता है, परंतु चौथे के साथ कोई यहाँ आ सकता है तो चौथा हो सकता है, तीसरे में मरण नहीं तो वो नहीं हो सकता, पहला और दूसरा वो भी हो सकता, पहला दूसरा चौथा। अब लब्धि अपर्याप्त तिर्यंचों में नरकायु देवायु तथा वैक्रिक षटक का बंधन होने से आयु तो वे बांधेंगे, लब्धि अपर्याप्त होते हैं, या तो मनुष्य आयु बांधेंगे या तिर्यंच आयु बांधेंगे, दो आयु तो बांधेंगे ही नहीं, और वो देवगति नरक गति और उनके वैक्रियक वगैरह वो भी नहीं बांधेंगे, इसलिए वो छह भी नहीं बांधेंगे। तो 117 जो अपनी हमने ऊपर देखी थी तो उसमें से 8 गई, तो 109 का बंध होता। यहाँ मिथ्यात गुणस्थान का सद्भाव कहा गया है, यहाँ मात्र मिथ्या दृष्टि ने पहला ही गुणस्थान होता है। अब तक हमने गति मार्गणा की बात देखी, बंधक कौन से कितनी प्रकृतियों का बंधक है उसकी चर्चा चल रही है, अब इंद्रिय मार्गणा में बात करेंगे। तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते हैं आपको मालूम है? मार्गणा का अर्थ क्या है? पूरे संसारी जीवों के उस विशिष्ट अपेक्षा से उसके विभाजन करना, भेद करना, क्लासिफिकेशन करना। तो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा 5 हो गई, वहां वो संगी है कि असंगी है वो नहीं कहेंगे, एक केंद्रीय तीनिय तीनिय चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रिय, ये 5 भेद हो गए। तो पर्याप्त एकेंद्रिय तथा विकलेन्द्रियों में, अभी ये एकेंद्रिय और विकलेन्द्रिय कौन सा नहीं बांधते हैं? तो कहते हैं तीर्थंकर, आहारक द्विक, देवायु, नरकायु तथा वैक्रिक षटक, इन एकादश प्रकृतियों का बंधन न होने से 120 में से 11 नहीं बंधेगी, 109 प्रकृतियों का बंध कहा गया है। इनके प्रथम और द्वितीय गुणस्थान होते हैं, ये द्वितीय गुणस्थान के लिए आगे पर्याप्त एकेंद्रिय शब्द लगाया, क्योंकि हमने देखा था एक में ऐसा भी है सासादन के साथ मरकर पर्याप्त एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय पंचेन्द्रिय तक जन्मता है, परंतु उसके ये जो निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में ही वो जीव सासादन में से पहले गुणस्थान में आ जाता है, और वहां कोई आयु बांधने का सवाल नहीं है, वो पर्याप्त ही जीव होते हैं, परंतु निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था है, ना वहां कोई देवगति बंधेगा और ना ही कोई नरगति बांधेगा, इसलिए वैकिरिक षटक को भी नहीं लिया वहां। बराबर, पर वैकिरिक षटक में गति आ गई, वैकिरिक षटक में देवगति नरगति आ गई। दो आयु लिए
देवगति नरगति बोलकर
देखो देवायु नरकायु, मैंने बोला था देवगति नरक गति और आदि, वो सब मिलकर वैक्रिक षटक होता है, जिसमें देवगति भी है नरक गति भी है, वो सब मिलकर जो वैक्रिक षटक है वो यहाँ नहीं बनता। हाँ, इनमें सासादन वाला उत्पन्न हो सकता है उसकी अपेक्षा ली, क्यों दूसरे गुणस्थान में तो आयु का बंध है, निवृत्ति अपर्याप्त में तो चारों आयु नहीं बांधता है, वो तो बात सही है। देखो देखो यहाँ क्या बात चल रही है, वो जरा देखो, पर्याप्त एकेंद्रिय विकलेन्द्रियों में, ये पर्याप्त एकेंद्रिय विकलेन्द्रिय की बात की है, तो इनमें तो पर्याप्त जो बाद में जो पर्याप्त होने वाले हैं, यानी जो पर्याप्त अवस्था में उनके तो सासादन होगा ही नहीं, परंतु उनको सासादन कब होगा? निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था। पर यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ तो पर्याप्त की बात कर रहे थे, घोटाला हो रहा है ना, बहुत कंफ्यूज। देखो क्या कहना चाहते हैं, पर्याप्त एकेंद्रीय विकलेंद्रियों में तीर्थंकर आहारक द्विग देवायु नरकायु एकरेक षटक इनका तो बंधन नहीं होता, क्योंकि एकेंद्रीय जीव देवायु नहीं बांधते, एकेंद्रीय जीव नरकायु नहीं बांधेंगे, वो देवगति भी नहीं बांधेंगे, आदि सभी वो सब लगा लेगा, उनके तो उसका बंधन नहीं, क्योंकि एकेंद्रीय विकलेंद्रिय की बात है, भले वो सासाधन में हो कुछ भी हो तो बांधे गई। तो यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त है इसलिए नहीं बोला है, यहाँ तो पर्याप्त एकेंद्रीय विकलेंद्रिय की बात है, वो कौन सी नहीं आयु बांधेंगे, मन देवायु और नरकायु, वो तिर्यंचायु मनुष्यायु बांध सकते हैं ना, बांध सकते हैं, पर्याप्त जीवों की बात चल रही ना, यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त शब्द नहीं लगाया। तो इनके प्रथम द्वितीय गुण स्थान होते हैं ये जो बताया है, वो तो वहां उत्पन्न होते हैं उस अपेक्षा से बताया। अब पंचेंद्रिय पर्याप्त को में 14 यहाँ निवृत्ति अपर्याप्त की बात नहीं है, पर्याप्त एकेंद्रिय विकलेंद्रिय की बात है। हाँ हाँ हाँ, दोनों गुणस्थान लिए वहाँ पर्याप्त पर्याप्त की भेद किए बिना ले, यानी सासाधन में मरकर इन पर्यायों में जीव उत्पन्न होता है, वहाँ सासाधन होता है कुछ कम काल के लिए, वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, मिथ्यात्व वो भी जब वो तो पर्याप्त पूरी होगा अपने योग्य काल में होगा। अब यहाँ कहेंगे पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में एकेंद्रिय और विकलत्रय की बात हो गई, अब पंचेंद्रिय की बात, तो पंचेंद्रियों में 14 गुण स्थान कहे, यहाँ तिर्यंचों की बात नहीं हो रही, यहाँ इंद्रिय मार्गणा की बात चल रही, प्रथम हम पंचेंद्रिय तिर्यंच देख रहे थे, नहीं तो ये प्रश्न हो गए इनके उनमें कैसे हो सकता है। तो अपने अभी क्राइटेरिया केवल कितनी इंद्रिय वाला है, तो पंचेंद्रियों में तो 14 ही गुणस्थान होते हैं, अभी वो पंचेंद्रिय पर्याप्तकों की बात करते हैं, अभी पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तकों में, यानी यहाँ पर्याप्त ने नपुसक वेदी वो बात यहाँ नहीं लगा रहे, पर्याप्त और अपर्याप्त इतना भेद ले रहे, तो ये पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तकों में तो निवृत्ति अपर्याप्त है, पंचेंद्रिय है, तो गुणस्थान कौन सा होगा?
पहला, दूसरा,
चौथा और छठा भी होगा, आहारक की अपेक्षा निवृत्ति अपर्याप्त कह सकेंगे है ना, इसे तो तेरहवें को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पंचेंद्रिय निवृत्ति अपर्याप्तकों में आहारक द्विक, देखो उदय होगा परंतु बंद नहीं होगा ना उस समय, नरक द्विक देव को नहीं लिया है, क्योंकि आहारक के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था हो या कोई सम्य दृष्टि यहाँ आया है मनुष्य में, उसकी निवृत्ति पर्याप्त दशा है, वहां देवगति तो बांधेगा, अलमी आई बात, कोई सम्य दृष्टि अभी तीर्थंकर का जीव माँ के पेट में आया, उसकी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था चल रही है, वो देवगति को बांधेगा ना, उस समय क्या बांधेगा, गति तो हर समय बनती है, आयु की बात नहीं हो रही है, गति की, नाम कर्म हर समय जो बनते हैं उसमें गति तो बंधेगी बंधेगी, क्योंकि आठवें गुणस्थान तक हर समय कोई ना कोई गति तो बनती रहती है। हाँ, निवृत्ति पर्याप्त की अवस्था की बात है, आयु की गति
ना?
हाँ, तो उसकी बात पूछ रहे हैं। हाँ, मिल गया, आयु ही नहीं बांधेगा, हाँ देखो पंचेंद्रिय निवृत्ति पर्याप्तकों में आहारक द्विक नरक द्विक तथा आयु चतुष्टय इस प्रकार आठ प्रकृतियों का बंधन नहीं होने से 112 का बंध का है, 120 में से 8 गए, सूरद्विक को यहाँ नहीं लिया है, यानी सूरज चतुष्क को नहीं लिया, इनके पहला दूसरा चौथा छठवां तथा तेरहवें गुणस्थान कहे हैं, तेरहवें गुण स्थान में भी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था बताते हैं, क्योंकि वो कपाट में तो औदारिक मिश्र है, फिर वो पर्याप्ति उनकी जो आगे चलकर होती है उसके बाद में। आहारक मिश्र काय योगावस्था में, यानी आहारक मिश्र काय योग है उसके, जीव निवृत्ति अपर्याप्तक होता है, यानी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर उसको आहारक काय योग वाला कहेंगे, उसके पहले आहारक मिश्र काय योग।
कब तक?
छठे गुणस्थान। आहारक शरीर बना रहा है, वहां आहारक मिश्र काय योग है उसके, उस समय प्रमत्त संयतावस्था पाई जाती है, उसका छठा गुणस्थान है, इसलिए वहां वो देवदीप वगैरह का तो बंद करेगा ही ना, ये निवृत्ति पर्याप्त में उसको भी लिया था। छठे गुणस्थान का नाम क्यों लिया ये यहां बता रहे। अब तेरहवें गुणस्थान का भी नाम लिया है तो केवली भगवान के समुद्घात काल में औदारिक मिश्र काय के समय, यह औदारिक मिश्र काय कब होता है नितिन भाई? समुद्घात में औदारिक काय योग कब होता है? औदारिक मिश्र कब होता है बताया था ना मैं कितनी बार बताया हाँ। समुद्घात में चार अलग अलग होते हैं हाँ, तो वहां औदारिक मिश्र कब है? कपाट में। दंड में तो औदारिक है, फिर औदारिक मिश्र हो जाएगा, फिर कारमाण हो जाएगा, वापस औदारिक मिश्र हो जाएगा, है ना, उल्टे क्रम से। तो कपाट अवस्था जो है समुद्घात की, वहां औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है, वहां उनके निवृत्त पर्याप्त दशा कहेंगे। अब आगे लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रिय ही लिए, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा पंचेंद्रिय लिए, परंतु लब्धि अपर्याप्त कहेंगे तो कौन कौन से गति वाले हो जाएंगे उसमें? तीर्य चर्मनिष्ठ, क्योंकि पंचेंद्रिय इतनी अपने अपेक्षा लगाई है, तो लब्धि अपर्याप्त पंचेंद्रियों में तीर्थंकर आहारक द्विक देवायु नरकायु वैक्रिक षटक इन 11 प्रकृतियों को छोड़कर 120 में से 11 निकाली 109 का बंध बताया गया, क्योंकि ये लब्धि अपर्याप्तक है ना, नियम से मिथ्या दृष्टि निवृत्ति अपर्याप्त में तो तीर्थंकर का बंध कहा, ये कौन से लब्धि अपर्याप्त, यानी वो श्वास का 18वां भाग वाली वो बात है, यहाँ तो उनके भी मनुष्यायु तिरंचायु का बंध तो होगा परंतु देवायु नरकायु का नहीं होगा, ना ही देवगति नरक गति बांधेंगे, इसलिए वैकरिक षटक को भी निकाला, देवायु नरकायु का भी निकाला, तीर्थंकर आहार देख तो यहाँ संभव ही नहीं बंध, और गुणस्थान कौन सा तो प्रथम ही होता है, ये इंद्रिय मार्गणा की बात हो गई। अब काय मार्गणा, जैसे एक इंद्रियों में घटित किया है वैसे पृथ्वी काय वगैरह में घटित करेंगे, तो साधन गुणस्थान कौन से कायिकों में कहेंगे हम, जैसे ऊपर हमने एक इंद्रियों में लिया था वैसे साधन गुणस्थान कौन से कायिकों में होगा? आप प्रेरणा भी पांचों में होगा कि हाँ, तो नहीं नहीं नहीं, साधन वाला मरकर एक इंद्रिय में जाता है ना, हमने देखा था पर्याप्त एक इंद्रिय में जा सकता है, तो पर्याप्त एक इंद्रिय में के सभी कायिकों में जाएंगे?
हाँ,
किसको छोड़ेंगे? वो नहीं पूछ रहे, हाँ अग्नि कायिक वायु कायिक को छोड़कर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, पृथ्वी कायिक पर्याप्त, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक में उत्पन्न हो सकते हैं। देखो यहाँ देखते काय मार्गना की बात अभी चलेगी, पृथ्वी काय जल काय और वनस्पति काय वाले जीवों में मिथ्यात्व सासाधन गुणस्थान होते हैं, तैसे सासाधन में मरकर इनमें उत्पन्न होने की अपेक्षा से कुछ काल के लिए, वो भी निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में होता है, बाद में वो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, इनकी 109 प्रकृतियों का बंध होता है, यानी वहां नरकायु नहीं बंधेगी, देवायु नहीं बंधेगी, वैकिरिक षटक का बंध नहीं होगा, और फिर ये जो हम देखेंगे तीर्थंकर आहारक वगैरह वो भी नहीं बंधेंगे, 109 का बंध होगा। अग्नि कायिकों और वायु कायिकों में अब ये तो 109 तो नहीं बांधेंगे, इन एडिशन और क्या नहीं बांधेंगे अग्नि कायिक वायु कायिक? मनुष्य द्विग, क्योंकि वे तो उसकी उद्वेल ना करने वाले, वो कैसे मनुष्य द्विग का बंध करेंगे? तो मनुष्य द्विग को भी नहीं बांध सकते, उच्च गोत्र भी नहीं बांधेंगे, क्योंकि मनुष्य द्विग के साथ उच्च गोत्र की भी वो उद्वेल ना करने वाले होते हैं। तथा मनुष्यायु का बंध न होने से ये चार प्रकृतियां घटाएंगे। ऊपर हमने 109 देखी थी अन्य कायिकों में, उसमें से चार गई तो 105 का बंध है। गुणस्थान क्या लिखा है? मिथ्यात्व ही होता है, इसका अर्थ सासाधन के साथ इनमें जन्म नहीं होता। गोमटसार कर्मकांड में लिखा है, नहीं सासणो अपुण्य साहारण सुमगे ये तेउदुगे, यानी जो सासाधन गुणस्थान अपुण्य ने लब्ध्य पर्याप्तकों में नहीं होता, पर्याप्त एक इंद्रिय में हो सकता है ऐसा कहा था, साहरण में यानी निगोद में नहीं होता है, भले वो पर्याप्त भी निगोद हो गए, सुहमगे सूक्ष्म में नहीं होते, बादर में होता है, तेउ दुगे ने तेज द्विक यानी तेजो कायिक और वायु कायिक, तेजो कायिक का दूसरा नाम है अग्नि कायिक। 115 नंबर की गोमटसार की गाथा यहाँ उन्होंने उद्धृत की है। निगोद में भी नहीं होगी, क्योंकि सासाधन वाला, क्योंकि देखिए हमने देखा ना पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति क्या है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, तो बांधेंगे नहीं तो वहां उत्पन्न भी नहीं होगी। हाँ कहाँ लिखा? वो मैंने पढ़ा नहीं, मैं अभी पढ़ती हूँ। लब्ध्य पर्याप्त कौन? अपुण्य, साधारण वनस्पति कायिकों यानी साहारण, संपूर्ण सूक्ष्म स्थावर जीवों में यानी सभी, संपूर्ण यानी सभी सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अग्नि कायिक वायु कायिक जल कायिक, स्थावर, तथा तेज कायिक वायु कायिकों में सासाधन गुणस्थान नहीं होता, नारकी जीवों में भी अपर्याप्त अवस्था में सासाधन का अभाव है। ये क्यों ऐसा कहा? हाँ, सासाधन में मरने वाला नरक में नहीं जाता। अभी योग मार्गणा, योग मार्गणा की अपेक्षा भेद कितने अश्विन भाई? 15। कौन कौन से? इन्हें सात का योग। तो यहाँ कहते हैं असत्य मन यानी असत्य मनोयोग तथा असत्य वचन योग, उभय मनोयोग तथा उभय वचन योगों में मिथ्यात्व से आदि, मिथ्यात्व से आदि नहीं, मिथ्यात्व आदि से क्षीण कषाय पर्यंत द्वादश गुणस्थान पाए जाते हैं। मिथ्यात्व से आदि नहीं चाहिए था, मिथ्यात्व से क्षीण कषाय पर्यंत लिखते तो भी चले, या मिथ्यात्व आदि वो से नहीं भी लगाए ना, मिथ्यात्व आदि क्षीण कषाय पर्यंत तो भी चलेगा, या आदि से भी चलेगा। मिथ्यात्व से लेकर क्षीण कषाय तक, या तो उसको आदि लगाओ या से लगाओ, दोनों नहीं लगते। देखो मिथ्यात्व गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कहा, किस किस को लिया? असत्य और उभय को, क्योंकि 13वें वाले को भी सत्य और अनुभय योग होता है। क्या कहा? 13वें गुणस्थान वाले को सत्य और अनुभय होता है, और 12वें वाले को तो चारों है, परंतु 13वें वाले को ये असत्य और उभय नहीं है, इसलिए कहते पहले गुणस्थान से 12वें तक तो ये पाए जाएंगे। ख्याल में ना, तेरहवें को नहीं इसमें से निकालना था इसलिए वो बारहवें तक लिमिट बताई। यानी पहले गुणस्थान में सबके ये होता ही ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि पहले गुणस्थान में तो एकेंद्रीय भी है, उनके वचन योग नहीं होगा, और बाकी असंगी तक के अन्य जीव है उनको मनोयोग नहीं होगा। परंतु यहाँ इंद्रियों की बात नहीं ले रहे, गुणस्थानों में बताए। तो पहले गुणस्थान में जो अन्य इंद्रियादि जीव है, पंचेन्द्रिय आदि है, उनके ये असत्य और उभय भी होगा, चारों ही होते हैं। परंतु चारों ही मनोयोग और वचन योग तेरहवें वाले को नहीं है, इसलिए बारहवें तक की लिमिट बताए। अब कहते हैं सत्यमान सत्य वचन तथा अनुभय मन तथा अनुभय वचन में सहयोगी जिन पर्यंत, यानी यहाँ भी मिथ्यात्व से लेकर सहयोगी तक ले त्रयोदश गुणस्थान कहे हैं, एक से तेरह। वहां एक से बारह लिए थे, एक से तेरह लिए, यानी यहाँ चारों ही वचन योग मनोयोग की बात बता चुके हैं। अब कहते औदारिक काय योग में त्रयोदश गुणस्थान कहे हैं, क्योंकि औदारिक काय योग पहले गुणस्थान से तेरहवें तक तो पाया जाएगा। इंद्रिय मार्गना में देखेंगे तो किस किस को होगा औदारिक काय योग, कौन से इंद्रिय वालों को होगा? मैंने गति पूछी कि इंद्रिय पूछा? मैंने क्या पूछा? इंद्रिय पूछा, आप गति बोल रहे हैं। औदारिक कायोग, आप जरा शांति रखो। औदारिक कायोग कितने इंद्रिय वालों के होगा, ये मेरा प्रश्न। हाँ तो बोलो ना सबका। एक इंद्रिय वालों को कौन सा योग होगा? वो औदारिक शरीर वाले हैं ना, कौन सा शरीर है? स्पर्श के आप इंद्रिय क्यों बता रहे हैं? काय योग बताना है शरीर का। एक इंद्रिय तो उनकी इंद्रिय मार्गणा बताई, योग मार्गणा में एक इंद्रिय जीवों को कौन सा योग होगा? औदारिक का योग होगा। उसके पहले औदारिक मिश्र होगा, विग्रह गति में होता होगा तो कारमान का योग होगा। हल में आई ना बात? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, औदारिक का योग में त्रयोदश गुणस्थान कहे। ये एक एक वाक्य का अर्थ अपने को बराबर सही रूप से भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखना। मिथ्या तो गुणस्थान से तेरहवें तक ये सभी जगह पाए जाए। मनुष्य गति के समान वर्णन जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य गति में भी ये सभी गुणस्थान तो मनुष्य गति में होते हैं, तो वहां वैसे ही उसका वर्णन कहेंगे। औदारिक मिश्र का योग में, अभी औदारिक मिश्र यानी मनुष्य गति के समान चाहिए उसका अर्थ होता है, औदारिक का योग वाला कौन कौन से प्रकृतियों का बंध करेगा? तो ये जो तेरह गुणस्थानों में जो बताए वो सब वहां होगा। 120 परंतु पहले गुणस्थान वाला कितने का करेगा? 117 का करेगा। इस तरह से देखना, जैसे मनुष्य गति में हर गुणस्थान में कौन कौन सा बंध है देखा था हमने, वैसे यहाँ पर भी देखना। अब औदारिक मिश्र का योग वाला कौन से प्रकृतियों का बंधन नहीं करता है? तो कहते आहार विग यहाँ नहीं बांध सकता, भले वो सम्यक दृष्टि हो तो भी नहीं बांध सकता, क्योंकि उसका बंध तो सातवें आठवें में होता है। नरक द्विक का औदारिक मिश्र अवस्था में नरक द्विक नहीं बंधेगी। नरकायु और देवायु इन छह प्रकृतियों के बिना 120 में से छह गई, 114 का बंध होता है। देवगति बंधेगी, क्योंकि औदारिक मिश्र सम्यक दृष्टि के भी होगा चौथे वाले के, तो वो देवगति बांधेगा। हाँ वो बांधेगा, वैकृत वैकृत अंगो पांग भी बांधेगा। कल में ना हाँ नहीं बांधता ये बात, परंतु यहाँ क्लियरली गुणस्थानों में बताया नहीं है और क्लियरली भोग भूमि की बात नहीं की है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ मिथ्यात्व सासादन असंयत तथा सहयोगी जिन के ये गुणस्थान पाए नहीं, अच्छा ये गुणस्थानों के नाम बताए, ये गुणस्थान पाए जाते हैं। सहयोगी जिन ये गुणस्थान का नाम बताया उन्होंने, सहयोग के लिए इतने गुणस्थान पाए जाएंगे औदारिक मिश्र वाले के। कौन कौन से बताए? हाँ, नीति में
2, 4, 13
वैकृत काय योग में, अभी योग का प्रकरण चल रहा है, तो वैकृत काय योग जिनका है वो कौन कौन से प्रकृतियों का बंधन नहीं करेंगे तो देखते हैं। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग के समान 104 प्रकृतियों का बंध होता है, यानी किसको किसको छोड़ा, बोलो अभी आप बोलो।
हाँ,
वैकृत काय योग में आहार द्वीप को छोड़ा। हाँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ, नरगति नरगति देवगति देवगति अनुपुरी, वो षटक वाला पूरा लिया। देवायु नहीं बंधेगी, नरकायु नहीं बंधेगी। हाँ, आहार द्वीप बता दिया।
ये
सूक्ष्म नहीं बांधेगा, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं बांधेगा।
अच्छा,
सावर एक इंद्रिय बांधेगा तो सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त नहीं
बांधेगा,
इंद्रिय तीन इंद्रिय चतुर इंद्रिय नहीं बांधेगा। तो 12, 4, 16 हो गए ना, तो 16 प्रकृतियों को नहीं बांधेगा। कल में आई बात, ये 16 कैसे काउंट करना, देखो हमने पहले गुणस्थान की 16 प्रकृतियों की बंध विच्छेद देखी थी, उसमें से देव कौन से बांधते हैं, पहले सात छोड़ना, यानी एकेंद्रिय स्थावर आतप को बांध सकते हैं, आगे वाली 9 नहीं बांधेगी, तो 9 तो वो ले ली, और क्या लिया, देवगति वो भी स्वयं नहीं बांधेंगे, तो देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैकृत अंगोपांग ये 4 नहीं बांधेंगे, और आहार द्विक वो भी नहीं बांधेंगे, और देवायु देव द्वी क्या था, देवायु भी नहीं बांधेंगे, तो 9 और 7, 16 को नहीं बांधेंगे, देव स्वयं देवायु को नहीं बांधेंगे, देवगति को नहीं बांधेंगे, नरगति को नहीं बांधेंगे, वो सभी ले लेना उसमें, यानी नरकायु देवायु ली, वैकृत षटक लिया, आहार द्विक लिया, और बाकी जो देव नहीं बांधते, सूक्ष्म नहीं बांधते, साधारण अपर्याप्त द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुर इंद्रिय वो पहले आ गए,
चतुर्शब्द लेना पड़ेगा, 9 तो उसमें ले रहे
हैं ना। नहीं, अभी मैंने 9 से नहीं काउंट किया था, पहले 9 से किया था, तब नरक गति तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर दी थी हमने,
सूर्य चतुर्शब्द ले गए।
हाँ,
2 सूर्य चतुर्शब्द हार्दिक और देवायु।
देखो वैकृत मिश्र काय योग में, यानी ये देव 104 का तो बंद कर रहे हैं सौधर्म ईशान वाले के लिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को रखा है बंधने में, भवनत्री की बात करेंगे तो वहां वो भी नहीं बंधेगी, यहां तो बंद रहे। अब उसमें से जो वहां के वैकृत मिश्र काय योग है, यानी निवृत्ति अपर्याप्त दशा है, तो वहां तीर्यंचायु मनुष्यायु का भी बंध नहीं होगा। तो कहते मिश्र वैकृत मिश्र कायोग में मनुष्यायु तिर्यंचायु का बंधन न होने से 104 में से वो गई तो 102 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन से गुणस्थानों में यहाँ जीव जन्म ले सकता है, पहला दूसरा और चौथा, तो मिथ्यात्व सासाधन तथा असंयत गुणस्थान, ये बात ख्याल में आई। वैकृत कायोग इन जनरल बात की थी उन्होंने, वैकृत मिश्र में गुणस्थान कौन से होते हैं, तो उन्होंने बताया पहला दूसरा चौथा, परंतु यदि हम कहेंगे नरक में वैकृत मिश्र काय योग में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं, नरक में वैकृत मिश्र अवस्था में बहुत अच्छा पहला और चौथा, लेकिन दूसरे में वहां मरकर जाता नहीं, तो यहां लिया है तो वैकृत मिश्र इन जनरल देवों में भी है नरक में भी है, जहां होता है उसको पकड़ेंगे। अब आहारक कायोग में छठा गुणस्थान होता है, यहाँ 63 प्रकृतियों का बंध होता है, हमने देखा था ना, ये तो पांचवे में 67 था, फिर उसमें से 4 माइनस किए थे तो 63 का बंध होता था वहां, आहारक मिश्र योग में देवायु का बंध नहीं है, क्योंकि किसी भी मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं है, इसलिए आहारक मिश्र अवस्था में देवायु का बंध नहीं कहा, क्योंकि यहाँ बंध योग एक देवायु बची थी ना छठे गुण स्थान में, परंतु वो मिश्र का योग में नहीं बंधेगी, तो वहाँ 62 का बंध होता है। हाँ हो सकता है ना, देवगति का तो हो ही रहा है, आयु का बंध हो सकता है उस क्षण, आयु के बंध के लिए कोई रुकावट नहीं, मिश्र का योग में नहीं होता। कार्मण का योग में प्रथम द्वितीय चतुर्थ तथा त्रयोदशम गुणस्थान पाए जाते हैं। 13वें गुणस्थान में कार्मण का योग कब है? हाँ कौन से समय? हाँ उसके बाद वाला प्रतर लोक पुराण वापस प्रतर, तीन समय के लिए। चौथे गुणस्थान में कितने समय के लिए होगा? क्यों नहीं होगा? कार्मण का योग चौथे गुणस्थान एक या दो मैक्सिमम दो समय होगा, है ना, क्योंकि एक इंद्रियों के वो तीन समय वाली बात है। यहाँ औदारिक मिश्र का योग संबंधी 114 प्रकृतियों में से मनुष्यायु तथा तिर्यंचायु को घटाने पर 112 का बंध होता है। अभी हमने औदारिक मिश्र यहाँ पढ़ा था, वहाँ आहारक द्वीप का बंध नहीं है, नरक द्वीप का नहीं है, नरकायु देवायु का नहीं है, 114 का बंध कहा था, परंतु यहाँ कार्मण पहले में मैक्सिमम तीन समय, तीन मोड़ से जाने वाले, द्वितीय में भी पंचेंद्रिय से गया है उसमें भी दो से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी बाहर कहीं सूक्ष्म में तो जाएगा नहीं, जाएगा तो बादर में जाएगा, और यूजुअली वो तो रोज उसमें नहीं जाएगा। यहाँ बात ख्याल में औदारिक मिश्र का योग में, या जैसे हमने देखे थे प्रकृतियां वैसे ये कार्मण का योग चल रहा है, तो औदारिक मिश्र वाले लब्धि अपर्याप्त होंगे तो आयु का बंध होता है, इसलिए वहां तो लिया था तिर्यंचायु मनुष्यायु को, परंतु ये कौन सा जीव लिया है? कार्मण का योग, यहाँ तो किसी को भी आयु बंध नहीं होगी, नहीं बंध होगा ही नहीं, इसलिए खाली औदारिक मिश्र से दो ही छोड़े, औदारिक मिश्र से कंपेयर करने के लिए दो ही छोड़े, हल में है ना, वहां भी छोड़े थे हमने आहारक द्वीप वगैरह को, और यहाँ भी वही बात है, वहां तो 114 को लिया था, यहाँ 112 को ही लिया है। कार्मण का योग में आयु किसी को नहीं बंधेगी, औदारिक मिश्र में लब्धि अपर्याप्त को उनके तो आयु का बंध है, वो यहाँ नहीं लिया है, समझ में आई बात। अब वेद मार्गणा की बात चलेगी, वेद मार्गणा की अपेक्षा जीवों के भेद बताने आपको, और कोई भेद है? अपगत वेद, नवे गुणस्थान में तो वेदों का उदय का अभाव हो जाता है, अपगत वेद। तो तीनों वेदों में प्रथम से नव गुणस्थान पर्यंत, नवम गुणस्थान पर्यंत गुणस्थान होते हैं, वेदों में वेद वाले जीवों में गुणस्थान कितने? तो नौ। यहाँ तीनों वेदों में 120 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई है, वेद वाला है उसमें गुणस्थान नहीं बता रहे, बंधने में कोई रुकावट नहीं है, आहारक का भी बंध कर सकते, तीर्थंकर का भी बंध कर सकते, श्रीवेदी भी और नपुसक वेदी भी, उदय में उसकी चर्चा होगी कि उदय में आहारक का उदय पुरुष वेद वाले को होगा, तीर्थंकर का उदय भी पुरुष वेद वाले को आगे चलकर होगा, वेद में रहते हुए नहीं, 13वें गुणस्थान में, परंतु वो पूर्व में पुरुष वेदी होना चाहिए, बंध होने में कोई, यहाँ लिखा ना सभी का बंध हो सकता है। अब स्त्री वेदी के निवृत्त पर्याप्त अवस्था में प्रथम तथा द्वितीय गुणस्थान कहे गए हैं। इसका अर्थ क्या होता है नितिन भाई? क्यों? पुरुष वेदी में कितने गुणस्थान हो गए निवृत्त पर्याप्त में? निवृत्त पर्याप्त कब कहते हैं? तो पर्याप्त पुण्य नहीं हुई है नहीं, कौन सा जीव है? अभी कहीं से मरकर आया और पर्याप्ति चल रही है, तो उसमें गुणस्थान सभी 14 हो गए। बहुत घोटाला कर रहे। हाँ,
पहला, दूसरा, चौथा।
अभी छठे में हम वो आहार की अपेक्षा भी ले सकते हैं और फिर तेरवा को भी लिया था, परंतु यहाँ क्या बात हो रही है? स्त्री वेदी के निवृत्ति पर्याप्त अवस्था गुणस्थान कौन से हो गए? चौथा होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, होगा। इसीलिए तो पूछा कि सम्य दृष्टि मरकर स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं होता, न तिर्यंच वाला होगा, न मनुष्य होगा, न देव होगा, यानी देवी भी नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है? चौथा नहीं है, आहार वाला भी कोई सवाल नहीं है, और ऊपर तो अपगत वेदी है उसका भी सवाल नहीं है। तो स्त्री वेदी वाले निवृत्त पर्याप्त अवस्था में गुणस्थान दो, पहला और दूसरा। तो एक वाक्य पढ़ते तो उसकी पूरी कारण मीमांसा अपने ख्याल में आनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हम पढ़ेंगे कुछ याद रखेंगे कुछ भूल जाएंगे, उससे कुछ नहीं है। क्यों ये ख्याल में लेते हैं ना, तो फिर उसको रटने की वगैरह आवश्यकता नहीं। यहाँ अभी किसका बंधन नहीं होगा तो कहते चार आयु, क्योंकि निवृत्त पर्याप्त में तो कोई आयु बनता ही नहीं। तीर्थंकर प्रकृति बांधेगा कि नहीं बांधेगा? निवृत्त पर्याप्त दशा है स्त्री वट, पहले तो स्त्री वेद वाला बांध सकता था, परंतु यहाँ निवृत्त पर्याप्त दशा है, यानी पहला दूसरा गुणस्थान है और स्त्री वेद लिया है। नारकी तो अपर्याप्त दशा में बांध सकता है, वहां नपुसक वेद होता है, तो स्त्री वेद में तो कोई बांधेगा नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध नहीं है, आहार उद्विक का भी नहीं है, पहले दूसरे गुणस्थान है, वैकृत षटक में भी बंध नहीं होगा उसका। इन 13 प्रकृतियों को छोड़कर 120 में से 13 गए, 107 का बंध होता है। अभी यहाँ बात हो सकती है स्त्री वेदी के निवृत्ति पर्याप्त दशा में, वो भूमि की भी बात सिद्ध होती है यहाँ पर, वैकृत षटक का बंध नहीं होगा। अब नपुसक वेदी,
तो ये तो लिखा है कि जो भूमि में स्त्री वेद पर उत्पन्न जा रहा है उसके भी ये वैकृत षटक का बंध नहीं होगा।
वही तो बात होती है, होता तो उसमें बताते, वही तो मैंने बताया, ये बात सिद्ध हो जाती है यहाँ से। निवृत्ति पर्याप्त दशा में होता ही नहीं मिथ्या दृष्टि को। नपुसक वेदी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में, अब नपुसक वेदी लिया, ऊपर स्त्री वेदी लिया था, मिथ्यात्व सासाधन तथा असंयत गुणस्थान कहे गए। नपुसक वेदी में निवृत्त पर्याप्त दशा में असंयत गुणस्थान मात्र नरक वाले को ही लेना है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि अन्यत्र उत्पन्न होगा तो पुरुष वेद में ही उत्पन्न होगा। यानी सम्यक्त्व के साथ कोई मनुष्य में आता है, सम्यक्त्व के साथ कोई भूभूमि का तीर्यंच होता है, सम्यक्त्व के साथ कोई देव में चला जाता है, तो उसके तो पुरुष वेद ही होगा। तो नपुसक वेद में जो असंयत गुणस्थान निवृत्ति पर्याप्त में कहा वो तो नरक में ही होगा, पहले नरक में।
कारण क्या है जिसे वेद मार्गना का वर्णन करते हैं?
हाँ,
तो हमेशा पहले स्त्री नपुसक पुरुष लेते हैं, गति मार्गना करते हैं तो नरक तिर्यंच मनुष्य देव लेते हैं, और स्त्री मार्गना का द्वितीय वर्णन करते हैं
स्त्री वेद नपुसक वेद, क्योंकि हम भी जब याद करते थे ना प्रकृतियों के नाम, तभी हम नव नौकशांक के नाम लेते हैं, नव नौकशांक के नाम लेते हैं, स्त्री वेद नपुसक वेद पुरुष वेद ले सके ना। हाँ, से रति शोक गुप्त सा स्त्री वेद पुरुष वेद, स्त्री पुरुष और नपुसक कहते हैं, या स्त्री नपुसक,
जी हमेशा जितने वर्णन करेंगे जैसे आप लोग नरक गति का करेंगे, फिर उसके बाद में तिरंज करेंगे, फिर मनुष्य का भी देव करेंगे।
तो उसमें जो स्त्री में तो बिल्कुल उत्पन्न ही नहीं होता, नपुंसक में तो हो सकता है नरक में, इसलिए उसको लिया। यहाँ अब यहाँ कौन कौन से नहीं बंधेंगे, चारों आयु नहीं बंधेगी, आहार द्विक वैक्रीय षटक इन द्वादश प्रकृतियों के बिना 108 का बंध होगा। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति को बंध में लिया, बंधने वाले में लिया, क्योंकि चौथा गुणस्थान वाला लिया ना, इसलिए नारकी यानी नपुसक वेदी निवृत्ति पर्याप्त दशा में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर रहा है, वो नरक में जाने वाले की अपेक्षा। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जब नरक में जाता है तब उसके अपर्याप्त दशा में तीर्थंकर का बंध होने से यहाँ 108 का बंध कहा है। ऐसा स्त्री वेदी में नहीं होता, नपुसक वेदी में तो हो सकता है पहले नरक में सम्यक्त के साथ जाने वाले की, स्त्री वेदी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सम्यक्त जीव प्रथम नरक तो जाता है और वहां नपुसक वेदी होता है, किंतु वह स्त्री वेदी नहीं होता, ये तो नियम। अन्यत्र भी कहीं नपुसक वेद में जन्म नहीं लेगा, मात्र नरक में जाने वाले की होगी। पुरुष वेदी के 120 प्रकृतियों का बंध होता है। यहाँ अपनी मार्गणा मात्र वेद संबंधी चल रही है, तो जहाँ यथा योग्य जिस गुणस्थान में जिस प्रकृतियों का बंध होता होगा उसकी अपेक्षा 120 का बंधक का। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में उसके आहार द्विक नरक द्विक तथा चार आयु को छोड़कर 112 का बंध होता है। ये बात ख्याल में है ना, यानी यहाँ पर भी देव द्विक का वगैरह बंद करता है तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से लेना। मिथ्या तो सासाधन वाला तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था में वैक्रिय षटक का बंध नहीं करेगा, इस तरह से लेना। अब योग वेद कषाय मार्गणा चलेगी। कषाय मार्गणा में क्रोध मान मार्ग कषाय कहाँ तक है, तो 10वें तक है, और क्रोध वाले कहाँ तक है, मान वाले कहाँ तक है, माया वाले कहाँ तक है, ऐसा कहेंगे तो 9वें तक है कहेंगे। तो कषाय मार्गणा यहाँ 1 से 10 पर्यंत गुणस्थान कहे गए हैं, यहाँ बंध 120 प्रकृतियों का होता है। यानी क्रोध वाले जो कौन कौन से प्रकृतियों का बंध करेंगे तो सभी 120 क्रोध मान माया लोग सभी ले लेना, यानी वो अनंतानुबंधी है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं है, बस क्रोध मान माया लोग इतने ही भेद कर दिए। अब ज्ञान मार्गणा कुमति कुष्ठ तथा क्रोधि ज्ञानों में तीर्थंकर तथा आहार द्विक को छोड़कर यानी 120 में से 3 गई, 117 का बंध होता है। हमने देखा था पहले गुणस्थान में 117 बंध योग्य थे। यहाँ मिथ्यात्व तथा सासाधन गुणस्थान कहे गए हैं। सुमति सुश्रुत तथा सु अवधि ज्ञानों में 4 से 12 पर्यंत गुणस्थान होते हैं, यहाँ बंध योग्य 79 प्रकृतियां कही गई हैं, क्योंकि चौथे वाले को तीर्थंकर का बंध है, आगे जाके आहारक द्विक का बंध है, वो सब इंक्लूड कर देना।
हाँ,
हाँ
अपना शुरू चल रहा है, बंद तो स्वामित्व अधिकार चल रहा है,
बंध का बंधक कौन है,
स्वामित्व अधिकार चल रहा है,
प्रकृति बंधक।
ये तो दाल बदल टूट गया है, यहाँ पर मंडल करें कि कौन से गुणस्थान वाले इसके स्वामी है, वर्ड आना चाहिए, स्वामी ने जो ना
ये उन्होंने गोमट सार में से लिया,
ये गोमट सार से लिया है और वो चूंकि ताल पत्र नष्ट हो गया है, ठीक है ना। लेकिन अगर जबकि हम बंध स्वामित्व की प्रेरणा करते हैं, अपन तबला को देखें, बंध स्वामित्व विषय में देखें, तो दिखेगा, मतलब पूरा बताएगा उसमें,
वो तो कहेंगे बंधक है बंधक नहीं है, ऐसी बात, कौन बंधक है कौन बंधक नहीं है, क्योंकि अभी
उन्होंने किया ना इसलिए, जैसे उन्होंने किया वो तारपत्र में,
तारपत्र में उन्होंने नहीं मिला तो वहाँ क्या होना चाहिए,
उन्होंने गुमर सर से बता दिया। हम जो है बंधु स्वामित्व विषय ले ले डेवलप हो तो उसके हिसाब से तो हमको तो वो बराबर बोल कहीं लिखते भी ना।
हाँ। ये बंधक है नहीं बंधक है ऐसे जो बात हाँ। उन्होंने बताई थी, नहीं वो तो आएगी ना अभी बात, अभी वो तो बात आएगी, अभी तो बहुत सारी प्ररूपणाएं चलेगी, अभी तो केवल सत प्ररूपणा चल रही है इनकी, अभी तो संख्या की
बात लिखा है।
हाँ वही वहीं पर उन्होंने लिखा है कि आगे का उनके पास है ही नहीं, ये छपा हुआ ये जो ताड़पत्री का यहाँ लिखे थे उन्होंने, ताड़पत्र नष्ट हो जाने से, वो 49 पृष्ठ पर लिखा है उन्होंने, और फिर आगे 55 पेज पर जाके ताड़पत्र नंबर 28 नष्ट हो जाने के कारण वगैरह वगैरह वहाँ पर भी कुछ बातें लिखी है। अब जहाँ जो अंश निकल गया था वो उन्होंने, ये पढ़ने वालों के कुछ ख्याल में आ जाए बात इस हिसाब से वो ग्रंथ की बात यहाँ लिख दी। तो यहाँ लिखा ना 79 प्रकृतियां बंधन योग्य है। अब मन परे ज्ञान में प्रमत्त संयत से क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थान है, यहाँ 65 प्रकृतियां कही गई है, यहाँ तो चौथे में भी जितनी बन रही होगी उतनी बताई, चौथे में कई इन्हें ऐसे नहीं अकेले चौथे में नहीं,
कुछ
परंतु उसमें हरेक गुणस्थान की बंध योग्य ऐसा नहीं लिया, छठे में भी है सातवें में फिर कौन सी है आहारक द्वीप का सातवें में बंधे उसको भी इंक्लूड कर दिया, जो कुछ बंध योग्य उसको सबको ले लिया। यहाँ आहारक द्वीप का भी बंध होता है क्या, कहा मन परे ज्ञानी के आहारक द्वीप का उदय नहीं है परंतु बंध होने में कोई बाधा नहीं है, आगे लिखा देखो, मन परे ज्ञानी के आहारक द्वीप के उदय का विरोध है परंतु बंध का विरोध नहीं है। यानी बंध होता है ना, आहारक द्वीप का भी बंध होता है, मन परे ज्ञानी के आहारक द्वीप का बंध है, उदय नहीं है, क्योंकि हमने उदय में जो चारे बातें नहीं होती उसकी बात की। आगे हाँ, केवल ज्ञान में, ज्ञान मार्गना की बात चल रही है, संयोग केवली अयोग केवली गुणस्थान पाए जाते हैं, ज्ञान मार्गना में केवल ज्ञानी के गुणस्थान पहले बता दिए, संयोग केवली के केवल साता वेदिनी का बंध होता है, अयोगी जिनके बंध का अभाव है। अब संयम मार्गना देखो, संयम मार्गना के जब भेद करेंगे तो कौन कौन से भेद हैं, जिनको संयम नहीं है वो असंयम, गुणस्थान 1 से 4, फिर संयमासंयम गुणस्थान 5वां, और संयम के कितने भेद, यथाख्या, ये 5 भेद, पहला असंयम संयमासंयम और ये सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्रदाय यथाख्या, ये संयम मार्गना की अपेक्षा 7 भेद। कोई आपको पूछेंगे संयम के कितने भेद हैं, तो आपको 5 बताना और मार्गना के 7। तो असंयम मार्गना में आदि के 4 गुणस्थान हैं, यहाँ संयम अवस्था में बंधने वाली आहारक द्विक का बंधन न होने से बंध योग्य 120 में दो ही नहीं बंधेगी, 118 प्रकृतियां कही गई है। तो असंयमी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है कि नहीं होता नितिन भाई? अरे किसको होता है असंयमी में? चौथे गुणस्थान। देश संयमी के पांचवा गुणस्थान होता। सामायिक तथा छेदोपस्थापना संयम में 6, 7, 8, 9 पर्यंत चार गुणस्थान होते हैं। यहाँ 65 प्रकृति बंध योग्य है। देश संयमी में नहीं बताया, उसमें भी 118 ही होगी ना। देश संयमी में ओ चार कम हो जाएगी, 114 हो जाएगी फिर। नहीं,
देश में तो 51 निकालनी पड़ेगी ना, 120 में से 51 प्लस 2 निकालनी पड़ेगी।
देखो देखो अच्छा असंयमी पहले गुणस्थान से सभी लिए थे, असंयमी पहले गुणस्थान वाले को भी लेना है। हाँ बराबर है। तो देश संयमी में
51 प्लस 2 53 नहीं बनेगी।
अभी हमने चौथे गुणस्थान में कहाँ देखा था 79 बंधे योगी कहीं चौथे से 12वें तक लिए थे नहीं क्या? हमेशा पांचवें गुणस्थान के बंधे योगी कितने देखते थे हम? 67 देखते थे ना, कितने देखते? यहाँ 65 प्रकृति बंधे योगी होती है। हाँ देश संयमी के 67 होती है बंधे योग। ये तो आगे की देखो, छठे में तो 63 हो जाती है, परंतु सातवें में दो आप मिलती है ना, फिर वो दो भी लेना है। तो छठे की जो है उसमें वो दो मिलाना है, उस अकेले सातवें की। छठे से लेकर नौवे तक की अगर गिनना है तो छठे वाले को भी गिनो और सातवें वाले को भी गिनो। तो छठे में वो दो बनती नहीं थी आहारक की, छठे में कितनी बनती थी? 63 और सातवें में दो 100 बनती है, तो उसको 63 के साथ मिलाओ तो 65 बंध योग्य। किसमें? सामायिक छेदोपस्थान। यहाँ गुणस्थान में नहीं बोलना है, यहाँ संयम मार्गणा में बोलना है। परिहार विशुद्धि संयम में अभी उसमें छठा और सातवां गुणस्थान है, छठे सातवें गुणस्थान होते हैं। यहाँ भी 65 प्रकृति का बंध होता है, इसको भी बंध योग्य में लिया आहारक को। हाँ इस संयमी के आहार द्विक का बंध तो होता है किंतु उनका उदय नहीं होता, स्पष्ट बताया ना। यानी जैसे मनपर्य ज्ञानी के लिया वैसे परिहार विशुद्धि वाले के भी लिया, आरक का बंध है उदय नहीं। यथाख्यात संयम 11वें से 14वें पर्यंत होता है। उपशांत कषाय से सहयोगी जिन पर्यंत केवल सातावेदनीय का बंध होता है, 14वें गुणस्थान में बंध का अभाव है क्योंकि वहां योग का अभाव हो जाता है। दर्शन मार्गणा की अपेक्षा भी बात करेंगे, ज्ञान संयम दर्शन। चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में 1 से 12 पर्यंत गुणस्थान होते हैं, यानी जिसको चक्षु दर्शन है उसको तो अचक्षु दर्शन होता ही होता है, तो अनादि से चला आ रहा है, 12वें गुणस्थान तक रहेगा। यहाँ 120 प्रकृति का बंध होता है क्योंकि सभी गुणस्थान ले लिए 12वें तक के, तो बंध योग्य तो सभी प्रकृतियां हो जाए। अवधि दर्शन में 4 से 12 पर्यंत गुणस्थान कहे गए हैं। देखो विभंग ज्ञान के साथ अवधि दर्शन को नहीं लेते, तो 4 से लेकर 12 तक बताए अवधि दर्शन वाले गुणस्थान। यहाँ अवधि ज्ञानवत 79 का बंध जानना चाहिए, यानी जो चौथे में भी बनती है और वो आगे चलकर आहार द्विक आदि बनती है, वो सबको ले लेना इसके साथ। केवल दर्शन 13वें तथा 14वें 13 तथा 14 ये दो गुण स्थान होते हैं केवल दर्शन के। बंध की अपेक्षा संयोगी जन के सातावेदनीय का ही बंध होता है। अब लेशा मार्गण कृष्ण नील तथा कापोत इन तीन लेशाओं में आदि के चार गुणस्थान होते हैं, क्योंकि इनके तो मात्र चार ही गुणस्थान तक है, शुभ लेशा तो आगे भी चलती है। अतः यहाँ आहार विक के बिना 120 में से दो गए 118 प्रकृतियों का बंध कहा है, यानी तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध लिया। कोई तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला देव यहाँ आता है तो उसके भी छह लेशा, चौथे गुणस्थान तक तो छह बताए ना, इसको लिया यहाँ पर। पीतलेशा में एक से लेकर सातवें पर्यंत गुणस्थान है, क्योंकि पीतलेशा ने पांचवें छठे सातवें तो शुभ लेशा होती तीन, परंतु शुभ लेशा पहले गुणस्थान वाले को भी है तो पहले से सातवें तक कहें। पीत और पद्म कहां से कहां तक? पहले से सातवें तक। और शुक्ल सात से पहले से तेरहवें तक। देखो यहाँ कहते हैं पीत लेशा में एक से लेकर सातवें पर्यंत गुणस्थान है, यहाँ सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण विकलत्रय नरकायु तथा नरकद्विक इन नौ प्रकृतियों का बंधन न होने से बंध योग्य प्रकृतियां 120-9 111 कही गई। पीतलेशा के काल में इनका बंधन नहीं होगा। नहीं देव की अपेक्षा नहीं, यहाँ पर भी पीतलेशा में कोई मनुष्य है उस समय इनका बंधन नहीं होगा, वो तो शुभ भाव वाली है ना। ये कैसी है? अति अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, भूख होगी परंतु जब वो पाप भाव कर रहा है उस समय होगी, जब उसके मंद कशा है पीतलेशा है तब वो इन प्रकृतियों को नहीं बांधता। पद्मलेशा में पूर्ववत सात गुणस्थान है, यहाँ एकेंद्रीय स्थावर आतप का बंध न होने से, जैसे आपने कहा ना देवों में तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं इसे लेशा के प्रकरण में समझने के लिए याद रखने के लिए। सौदर में ईशान में पीत होती है तो एकेंद्रीय स्थावर आतप का तो बंद कर रहे थे, पद्म वाले ऊपर के है तो उसका भी बंधन नहीं होता, तो वो हम लेशा पर भी घटित कर सकते। परंतु देवों में तो हम देव वैकृत चतुष्क को भी लिया था, यहाँ तो पद्मजीत पद्म वाले हैं, मनुष्य है वो तो देव का बंध करेंगे, देव स्वयं देव का बंध नहीं कर रहे थे, इसलिए वो सर्वथा वैसा नहीं समझते, क्योंकि देव जो हमने सौदर में ईशान वाले 104 का बंध करते हैं सका, और यहाँ तो पीत में तो हमने 111 का बंध कहा। अब पद्मलेशा में एकेंद्रीय स्थावर आतप भी नहीं है तो वो तो 111 में से 3 या 108 बंधे योग्य बताए। अब शुक्लेशा, यहाँ संयोगी जिन पर्यंत त्रयोदश गुणस्थान होते हैं, यहाँ पद्मलेशा संबंधी 108 प्रकृतियों में से तिरंज गति तिरंज गत्यानुपुरी तिरंज आयु तथा उद्योत इन शतार चतुष्क का अभाव होने से, अब यहाँ पर भी वो बात लागू करनी है जो शुक्ल लेशा के काल में उसका बंद नहीं करेंगे तीरेंच गति वगैरह का।
113 लेने का
शुक्ल लेशा 1 से 13 तक गुणस्थान है, परंतु इनका बंद तो ऊपर तो एक सातावेदनी बनती है, परंतु नीचे के गुणस्थानों में भी शुक्ल लेशा में क्या नहीं बंधेगा, तो ये सारे सूक्ष्म पर्याप्त वो तो सब ले ही लेना है, एक इंद्रिय संबंधी भी लेना है, तिरंज गति का भी बंध नहीं होगा, नरक गति का तो पहले ही छोड़ दिया था, 104 का बंध होता है। भव्य मार्गणा, भव्यों के तो 14 गुणस्थान होते हैं और इनके 120 प्रकृतियों का बंध होता है, और अभव्य में कौन सा बंधन नहीं होगा? अभव्यों में, तो सभी क्यों कह रहे हैं? तो तीर्थंकर और आहारक का बंध ही नहीं होगा, और अभव्यों के एकमात्र मिथ्या तो गुणस्थान ही होता है। अब सम्यक्त्व मार्गणा की बात चलेगी। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद है? छह भेद। और सम्यक्त्व के कितने पूछेंगे? तो कौन से? कौन से टाइप है उसके? सम्यक्त्व के टाइप बताने हैं। इन्हें औपशमिक,
चायोपशमिक
और शायी। बहुत अच्छा। ये तीन प्रकार के तो सम्यक्त हुए, और जिनके सम्यक्त नहीं है ऐसे भी जीव है, तो उनके और तीन भेद बताएंगे, मिथ्या दृष्टि, सासाधन और मिश्र वाले। तो वहाँ मिथ्या रुचि वाले भी कहा, उसका दूसरा नाम मिथ्या रुचि, सासाधन रुचि और मिश्र रुचि। देखो सम्यक्त्व मार्गणा में प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व में मिथ्यात् गुणस्थान संबंधी 16 तथा सासाधन गुणस्थान संबंधी 25 प्रकृतियों का अभाव होने के साथ देवायु तथा मनुष्यायु का अभाव होता है। ये बंध का अभाव की बात चलती है। प्रथम ऑप्शन के काल में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, तो दो ही आयु ली, तिर्यंचायु नरकायु, तो पहले दूसरे गुणस्थान में ली थी, इसलिए वो 16 में और 25 में इंक्लूडेड है ही है। तो कौन से, कहां से लेकर इनका आयु का बंध रुक गया था? अश्विन में प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के कितने काल पूर्व से इनके आयु का बंध रुक गया था? चारों आयु नहीं बंध रही है। कब से नहीं बंध रही है? प्रायोग्य लब्धि के ही शुरुआत में, जहाँ प्रकृति बंधापसरण शुरू हो जाता है, तो वहाँ पहले नरकायु वगैरह लिए ना, 46 कुछ है, उसमें पहले नरकायु का बंध रुक गया, फिर तिर्यंचायु का, फिर मनुष्यायु का, देवायु का, इस तरह से शुरू शुरू में प्रायोग्य लब्धि नाम का जो करण लब्धि के भी पहले, वहाँ विशुद्धि इतनी बढ़ती है ना, तो वहाँ आयु का बंध नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं देवायु मनुष्यायु का भी अभाव होता है, तो 16, 25, 41 हो गई, और ये 2 इसकी, तो 43 प्रकृतियों को घटाने से यहाँ 120 में से 43 गई, 77 प्रकृतियों का बंध होता है। ये तो जनरल बात है, मनुष्यों के लिए वो और भी, मनुष्यों को तो छोड़ ही लिया है, और भी 5 प्रकृति उसमें और घटानी पड़ेगी। यहाँ 4थे से 7वें पर्यंत 4 गुणस्थान कहे गए हैं। प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व के गुणस्थान कौन से? प्रथम ऑप्शन, आप कहाँ से कहाँ जाते वो बात बता रहे हो, उसकी बात नहीं। पहले गुणस्थान वाले को प्रथम ऑप्शन सम्य दृष्टि कहेंगे, पहले गुणस्थान वाले को करने के बाद उसके गुणस्थान कौन कौन से हो गए? छठे को क्यों छोड़ा? प्रथम ऑप्शन के काल में वो छठे में भी आएगा कि नहीं आएगा? तो छठे को भी लेना, सातवें को भी। तो चौथा, पांचवा, इन्हें प्रथम ऑप्शन समय दृष्टि के गुणस्थान कौन से? चौथा, पांचवा, छठा, सातवा। शुरुआत में 7वां प्राप्त किया, परंतु वो प्रथम ऑप्शन के काल में हजारों बार छठा सातवा, इतना वो प्रथम ऑप्शन का अंतर्मूर्त बड़ा है और छठे सातवें का अंतर्मूर्त छोटा है। तो चारों गुणस्थान बताए। अब द्वितीय ऑप्शन सम्यक्त्व में कहां से कहां तक? 4 से 11, क्योंकि द्वितीय ऑप्शन किया उसने 7वें में, 7वें से चढ़ा 11वें में, फिर क्रम से उतरते 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 छठे तक आ, छठे से 5वें, 4थे तक भी आ सकता है। तो द्वितीय उपशम का वो मूनस्थान चौथे से ग्यारहवें तक। आगे लिखते देखो, सात गुणस्थान, सातवें गुणस्थान से ग्यारहवें पर्यंत चढ़कर जब वह जीव नीचे उतरकर चौथे गुणस्थान में आता है, तब उसके प्रथमोपशम सम्यक्त्व के समान 77 प्रकृतियों का बंध होता है। ऊपर अभी बताया था ना, मनुष्य देवी को छोड़कर 77 प्रकृतियों का बंध होता है, तो वो द्वितीय ऑप्शन वाले को भी जो चौथे में आता है तो वहां पर उसके भी होगा। यहाँ भी मनुष्यायु तथा देवायु का अभाव कहा, इन्हें बंध का अभाव। सवो व समे नर सुर आऊणी नत्थि नियमे न, सवो व समय ने सर्वोपशम सम्यक्व में, यानी औपशमिक सम्यक्व में नर सुर आऊणी यानी मनुष्यायु और देवायु को इसका नत्थि नियमे ने वो बंध नियम से नहीं है। गोमरसार कर्मकांड की संस्कृत टीका में लिखा है, अत्र प्रथम द्वितीयोपशम सम्यक्वयोः आयुर्बंधात्, यानी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम सम्यक्त्व के काल में आयु का बंध का अभाव होने से आयु ही अबंधात है ना, अबंध होने से आरोह का अपूर्व करण प्रथम समये मरणो न इति विशेषो अनर्थ कहा। प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप कहते हैं चढ़ने वाले के अपूर्वकरण के प्रथम समय में या प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, ऐसा जो विशेष बताया वो अनर्थक है, बिना अर्थ का होगा। तो कहते इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्रागबद्ध देवायुष्कस्य अपि सातिशय प्रमत्तस्य श्रेणी आरोहण संभवात, क्योंकि जिसने पहले देवायु का बंध किया होगा उस सातिशय अप्रमत्त के भी श्रेणी चढ़ने का कार्य होता है। तो भले देवायु का बंध किया भी हो, बद्धायु है, फिर भी आठवें के पहले भाग में उसका मरण नहीं होगा। ये यही फिर हिंदी में बता रहे हैं। यहाँ यह प्रश्न किया गया है, प्रथमोपशम तथा द्वितीयोपशम सम्यक्तों में आयु बंध का अभाव कहा है, तब श्रेणी का आरोहण करने वाले अपूर्वकरण गुणस्थान के प्रथम समय में मरणोन मरण रहित ऐसा विशेषण निरर्थक रहा। इसका समाधान यह है कि पहले देवायु का बंध करने वाले सातिशय अप्रमत्त के श्रेणी का आरोहण संभव है। पूर्व में आयु बंध करने के अंतर्मूर्त पर्यंत सम्यक्त्व में मरण नहीं होता है। यानी आयु बंध के बाद अंतर्मूर्त पर मरण नहीं होता, ये तो सामान्य नियम है। जब आयु का बंध कहीं भी होता है तो उसके बाद अंतर्मूर्त प्रमाण काल छोड़कर ही मरण होता है। इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व में तथा श्रेणी चढ़ते अपूर्वकरण के प्रथम भाग के अंतर्मूर्त में मरण नहीं होता है, अन्यत्र उपशम श्रेणी में मरण होता है। यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में मरण होता ही नहीं, और उपशम श्रेणी में शुरू में नहीं होता, बाद में तो हो सकता है।
हाँ,
यहाँ प्रथम समय में लिखा है, परंतु हमने अभी तक प्रथम भाग में पढ़ा है। प्रथम नहीं, वहाँ भी प्रथम समय लिखा है। देखो पांचवी लाइन में वहाँ प्रथम भाग में लिखा है, और ऊपर से पांचवी लाइन में प्रथम समय में लिखा है। श्रेणी चढ़ते अपूर्वकरण के प्रथम भाग के अंतर्मूर्त में लिखा है, वो भी संस्कृत टीका से ही लिया है उन्होंने, और ऊपर का भी संस्कृत टीका में ही है। परंतु हमने यहाँ तक जहाँ निद्रा प्रज्वला का बंध विच्छित की होती है उस प्रथम भाग में ऐसा हमने पढ़ा पहले, यानी वो पूरे प्रथम भाग की बात है। ये जो आगे का रेफरेंस है ना, इस प्रकार प्रथमोपशम सम्यक्त्व में वगैरह वगैरह, वो भी संस्कृत टीका के अनुसार ही लिया है। अब ये दो लाइन पढ़ लेते आगे के, क्षोभम अथवा वेदक सम्यक्त्व चौथे से सातवें पर्यंत कहा है, क्योंकि क्षोभम के साथ कोई श्रेणी तो नहीं चढ़ता है, तो उसके उन्नसान चार पांच छह सात, वहां प्रथमोपम सम्यक्त्व की सतहत्तर प्रकृतियों में मनुष्यायु तथा देवायु को जोड़ने से उन्नासी का बंध कहा। वेदक सम्यक्त्व के काल में तो देवायु का यानी आयु का बंध तो होता है। शायिक सम्यक्त में चौथे से चौदह पर्यंत गुणस्थान है, यहाँ भी उन्यासी का बंध होता है, क्योंकि जो चौथे और आगे जो बंध होते हैं उसको सबको लिया। यही रुकना है कि चार लाइन पढ़नी और काल प्रयोगना तक आएंगे। तो संगी मार्गणा में यानी संगी और असंगी ऐसे दो ही भेद होते हैं, तो संगी जीव से जीव के एक से बारह पर्यंत गुणस्थान कहे गए। तेरहवे चौदहवे वाले को यहाँ संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी नहीं कह रहे, वो मन के द्वारा जानने का कार्य है। जीव समास में उनको संगी पंचेंद्रिय कहा, इंद्रिय मार्गणा में उनको हम पंचेंद्रिय कहेंगे, परंतु संगी मार्गणा में उनको संगी असंगी से रहित कहेंगे। यहाँ 120 का बंध होता है। असंगी के प्रथम तथा द्वितीय गुण स्थान होते हैं मरकर जाने की अपेक्षा से बताए। यहाँ तीर्थंकर तथा आहारक द्विक के बिना 120 में से तीन गए 117 का बंध कहा गया है, यानी वो भी असंगी मरकर देव में नरक में जाते हैं, उसकी अपेक्षा वो देवायु नरकायु भी यहाँ रखी है। यहाँ कोई निवृत्य पर्याप्त की अलग से बात नहीं की। आहार मार्गण यहाँ 1 से 13 गुणस्थान होते हैं, 120 प्रकृति का बंध होता है। अनाहारकों के अनाहार यानी कारमान का योग वाले, और चौदह वाले भी अनाहारक वहां तो बंद ही नहीं है। प्रथम द्वितीय चतुर्थ तेरहवे गुणस्थान कहे गए हैं। यहाँ चार आयु आहार युगल नरक द्विक के बिना 120 में 8 गए 112 का बंध कहा। इस तरह से ये जो प्रकृति बंध की बात चल रही थी उसमें से हमने वो कौन बंधक है और कहाँ कितनी प्रकृतियां बनती हैं उसकी बात हमने देखी। यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते